नमस्कार, आप सुन रहे हैं संयुक्त राष्ट्र समाचार सचिन गौर से 8 मार्च 2019 के इस कार्यक्रम में सुनिए। रोजगार के रास्तों पर अब भी अवरोधों का सामना कर रही हैं महिलाएं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने जारी की नई रिपोर्ट। वैश्विक प्रगति के लिए अहम है महिला सशक्तिकरण। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश का संदेश। कैनबिस यानी भांग के चिकित्सीय उपयोग पर कमजोर नियंत्रण, बढ़ा सकता है इसका शौकिया इस्तेमाल। और सुनिएगा एक विशेष बातचीत भारत में पार्सल वितरण सेवा कंपनी हे दीदी की सीईओ रेवती रॉय से। अब समाचार विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की एक नई रिपोर्ट दर्शाती है कि महिलाओं के लिए नौकरियों के अवसरों में हाल के दशकों में कोई खास बेहतरी देखने को नहीं मिली है। पिछले साल दुनिया भर में कामकाजी महिलाओं की संख्या 1.3 अरब थी, वहीं नौकरी पेशा पुरुषों की संख्या 2 अरब आंकी गई। पिछले 27 साल में स्थिति में सिर्फ 2% का ही सुधार हुआ है। वरिष्ठ पदों पर महिलाओं को अब भी समुचित प्रतिनिधित्व हासिल नहीं है और उनके रास्ते में अवरोध अब भी बने हुए हैं। महिला प्रबंधकों की संख्या 1/3 से कम है। श्रम संगठन की रिपोर्ट बताती है कि वैश्विक औसत के नजरिए से महिलाएं पुरुषों की तुलना में 20% कम कमाती हैं। महिलाओं के लिए एक बेहतर भविष्य का निर्माण करने के लिए ऐसे प्रयासों और नीतियों की वकालत की गई है जो बड़ी छलांग लगाते हुए स्थिति का कायापलट कर दें। इसके लिए कामकाज से जुड़े नए कानून बनाने, मौजूदा कानूनों की समीक्षा करने के अलावा उन कानूनों को खत्म करने की भी बात कही गई है जो महिलाओं को कुछ पेशों में काम करने से रोकते हैं। आज 8 मार्च है और दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने अपने शुभकामना संदेश में कहा,
Women's empowerment and gender equality are essential to global progress.
महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता वैश्विक प्रगति के लिए आवश्यक है। पिछले साल पहली बार हमने संयुक्त राष्ट्र के वरिष्ठ प्रबंधन समूह और उन अधिकारियों में लैंगिक बराबरी हासिल कर ली जो दुनिया भर में यूएन टीमों का नेतृत्व करते हैं। मुझे गर्व है कि मैं ऐसी गतिशील और सृजनशील महिलाओं के साथ संयुक्त राष्ट्र को एक नए युग में ले जाने के लिए हर दिन काम करता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं।
I wish you all the best for International Women's Day.
ये थे महासचिव एंटोनियो गुटेरेश। विश्व में व्याप्त असमानताएं मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामलों की सबसे बड़ी वजह है। जिनीवा में मानवाधिकार परिषद के सत्र को संबोधित करते हुए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त मिशेल बाशलेट ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि कई देशों ने इस समस्या पर लगाम कसने में उल्लेखनीय सफलता दर्ज की है जो टिकाऊ विकास के 2030 एजेंडा के नजरिए से बेहद अहम है। अमरीकी संसद में इस बार रिकॉर्ड संख्या में महिलाएं पहुंची हैं और उन्होंने संसद में 1/4 प्रतिनिधित्व हासिल किया है। बाशलेट ने कहा कि ये विविधता बढ़ाने की दिशा से लिया गया एक अहम कदम का संकेत है। उन्होंने चिंता जताई कि मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को शारीरिक और यौन हिंसा और इंटरनेट पर अपमान का सामना करना पड़ रहा है। प्रवासन के मुद्दे पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि इससे युवा विशेष तौर पर प्रभावित हो रहे हैं और लोग जोखिम भरी यात्राएं मजबूरी के कारण ही कर रहे हैं क्योंकि वो गरीबी, भेदभाव, दमन, हिंसा, कुशासन, जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों से पीड़ित हैं। इलाज के बाद एक मरीज के एचआईवी संक्रमण से मुक्त हो जाने की खबर को संयुक्त राष्ट्र एजेंसी यूएनएड्स ने उत्साहजनक बताया है, लेकिन एजेंसी ने आगाह किया है कि इस बीमारी को पूरी तरह जड़ से उखाड़ने के लिए अभी एक लंबा रास्ता तय करना है। लंदन के अस्पताल में एक व्यक्ति हॉजकिन लिम्फोमा कैंसर से पीड़ित था और उसका इलाज चल रहा था। 2016 में स्टेम सेल प्रत्यारोपण हुआ और एक डोनर से मिलने वाले सेल से एचआईवी वायरस के प्रति दुर्लभ आनुवांशिक प्रतिरोधक क्षमता आ गई। शोधकर्ताओं का कहना है कि 18 महीने पहले एंटी रेट्रोवायरल दवाओं को बंद करने के बाद भी एचआईवी के लक्षण अभी तक फिर देखने को नहीं मिले हैं, लेकिन अभी पक्के तौर पर यह कहना जल्दबाजी होगी कि उसका पूरी तरह से इलाज हो गया है। एचआईवी संक्रमण से मुक्त होने का यह सिर्फ दूसरा मामला सामने आया है। इससे पहले जर्मनी की राजधानी बर्लिन में 2007 में एक कैंसर पीड़ित व्यक्ति का ऐसे ही इलाज किया गया था। 2017 में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार दुनिया में 3.7 करोड़ लोग एचआईवी से पीड़ित हैं और 18 लाख लोग हाल में ही संक्रमण के चलते नए मरीज बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड INCB ने अपनी नई रिपोर्ट में कैनबिस भांग और मारिजुआना गांजा के चिकित्सीय इस्तेमाल से जुड़े फायदों और जोखिम को रेखांकित किया है। रिपोर्ट कहती है कि सही नियंत्रण का अभाव इसका शौकिया इस्तेमाल बढ़ा सकता है, जिसका सार्वजनिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा। साथ ही नियंत्रण बोर्ड ने सरकारों से अपील की है कि जिन लोगों की दर्द निवारक दवाओं तक पहुँच नहीं है, उनकी पीड़ा के अंत के लिए दवाइयों को उपलब्ध कराया जाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र समाचार से बातचीत में INCB सदस्य जगजीत पवाडिया ने रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर और जानकारी दी।
चार पांच मेन जो रिकमेंडेशंस हैं, उसमें सबसे पहले तो ये है कि चैप्टर वन में हमने कैनबिस से रिलेटेड चैप्टर बनाया है, क्योंकि बहुत सारे देश, क्योंकि कैनबिस को कंट्रोल किया हुआ कन्वेंशन के तहत, ये जो कंट्रोल है इसको उल्लंघित कर रहे हैं ये लोग, कई कंट्रीज जो अपने कंट्री में उसको लीगलाइज कर रहे हैं। तो इसलिए हमने उसमें पहले चैप्टर में ये कहा है कि जो कैनबिस के प्रोग्राम हैं वो बहुत संभल के उनको करने चाहिए, क्योंकि अगर वो अवैध तरीकों से सोसाइटी में जाएगा तो बहुत नुकसान करेगा, सोशल फैब्रिक खराब हो जाएगी। नंबर टू जो है, उसमें सरकारों को ये निवारण किया गया है कि ज्यादा से ज्यादा निवारक दवाएं जो हैं अपनी पब्लिक को प्राप्त करवाई जाएं, क्योंकि बहुत देश हैं जिनको गरीबों को पेन की दवा नहीं मिली, बड़े अमीर देश जो हैं उनके लोगों को ज्यादा दवाएं हैं, और उसका ये हो रहा है कि वहां दवाएं मिल नहीं रही हैं, और बड़े देशों में दवाएं जो मिल रही हैं वो प्रिस्क्रिप्शन गलत देके बहुत लोग मर भी रहे हैं। तीसरा बिंदु ये है कि जो लोग मादक पदार्थ इस्तेमाल करते हैं, कुछ देशों ने पीछे हाल ही में उनके खिलाफ ऐसी ऐसी कार्रवाइयां की हैं जो औपचारिक न्याय के अंतर्गत नहीं है, और हमने उनको आग्रह किया कि आप न्यायिक जांच करके ही उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई करनी है वो करनी चाहिए, और मानव अधिकारों को मद्देनजर रखते हुए। अगला पॉइंट ये है कि अफगानिस्तान में, जैसे आप जानते हैं, बहुत ज्यादा अफीम की खेती हो रही है और बढ़ती जा रही है, और अफगानिस्तान की सरकार अभी विचलित परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, उनके पास ना साधन है, ना तकनीकी साधन है, ना वित्तीय साधन है। INCB ने इन सब देशों को ये आग्रह किया है कि वो उनको तकनीकी और वित्तीय सहायता दें ताकि वो इस प्रॉब्लम से उभर आए। फाइनल पॉइंट जो मैं कहना चाहूंगी कि प्रिकर्सर केमिकल्स, जो केमिकल अवैध होते हैं, जो अवैध गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जो हेरोइन बनाने के लिए और दूसरी कोकेन वगैरह बनाने के लिए, उनको रोकने के क्षेत्र में उल्लेखनीय परिणाम तो हुए हैं INCB के माध्यम से, मगर अभी नए किस्म के केमिकल सामने आ रहे हैं, और नए नए केमिकल ये तस्कर जो हैं इस्तेमाल कर रहे हैं। इस पे विश्व में बहुत काम करना है, और प्रभावपूर्ण और ढंग से उसको निपटने के लिए सबको बैठ के चर्चा करके इस विषय में आगे बढ़ना है।
इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की विषय वस्तु यानी थीम है समान सोचें, स्मार्ट बनाएं, बदलाव के लिए इनोवेशन करें, अन्वेषण करें। दोपहिया साइकिल से लेकर इंटरनेट तक ऐसे कई साधनों ने महिलाओं के जीवन में बड़ा बदलाव लाने में अहम भूमिका निभाई है। लैंगिक समानता हासिल करने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य के केंद्र में नई खोज, नई तकनीक और अभिनव पहल हैं, और इसी दिशा में महिलाएं अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। जैसे हे दीदी नाम की एक पार्सल वितरण सेवा कंपनी, जिसमें हर जिम्मेदारी महिलाएं ही संभालती हैं। अधिकांश महिलाएं निम्न आय वाले या गरीब परिवारों से आती हैं, और मुंबई में कंपनी की CEO रेवती रॉय का कहना है कि इसके जरिए वो महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद कर रही हैं।
ये एक बिजनेस तो ऑब्वियसली है ही, एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी थी तो मैंने एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी ले ली वहाँ पे, लेकिन एक उससे भी बड़ी चीज जो है, इसमें हम महिलाओं का सक्षमीकरण कर रहे हैं, जहाँ पे वो ये हम ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके उन महिलाओं के लिए वो जॉब करती है 2-व्हीलर और 4-व्हीलर चला के, और जिसपे वो आर्थिक रूप से अपने पैर पे खड़ी हो रही है, और ये अपॉर्चुनिटी उनको केवल ये प्लेटफॉर्म पे मिल रही है जहाँ पे सब महिलाएं आके यहाँ पे काम करती है एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ इट।
अभी फिलहाल आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कितनी महिलाएं इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा?
350 to 380 महिलाएं ऑलरेडी काम कर रही है ऑन द रोड एंड अबाउट 2000+ लड़कियां हमारे इधर अभी ट्रेनिंग ले रही है ताकि 2019 में हमारा प्रयास है कि हम 5000 महिलाओं को ऑन द रोड ला।
हम कई बार देखते हैं यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट्स आती हैं, उसमें ये कहा जाता है कि महिलाओं को खासतौर पे आर्थिक क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में आने में कुछ दिक्कतें, कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आपका अपना निजी अनुभव के आधार पे क्या आप कुछ हमसे साझा करना चाहेंगी?
पहला चैलेंज तो मतलब एक शुरू करना, एक मेल डोमिनेटेड फील्ड में एक टैक्सी ड्राइवर बनना और एक टैक्सी एक कंपनी खोलनी, वो ही सबसे बड़ा चैलेंज था। उसके अलावा आर्थिक चैलेंज तो है ही, मतलब आर्थिक चैलेंज इतना ज्यादा कि अगर, और तो ये जो बिजनेस है वो हाई कैपेक्स बिजनेस है, मतलब एक टैक्सी को इस पे लाने के लिए, रास्ते पे लाने के लिए यू नीड एटलीस्ट 5-6 lakhs ऑफ रुपीज। तो वो हमें लोन नहीं मिलता था, क्रेडिट बैकग्राउंड नहीं होता था, तो वो पैसे का तो चैलेंज है ही। तीसरी सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चैलेंज जो है वो है कि महिला ड्राइवर को मैं कहाँ से लाऊं, कि महिला ड्राइवर तो है ही नहीं, कमर्शियल टैक्सी ड्राइवर तो थी ही नहीं। तो हमें उन लोगों को वहाँ जाके मोबिलाइजेशन और कैपेसिटी बिल्डिंग करने के लिए वहाँ बस्तियों में जाके हमें उनको और उनके फैमिली को कन्विंस करना पड़ता था कि आप आइए, यहाँ एक अच्छा मौका है, आप गाड़ी भी खरीद सकते हैं, आप ड्राइवर भी बन सकते हैं, आप इतना पैसा भी कमा सकते हैं। तो ये सब करने के लिए बहुत टाइम लगा, पहले जो 3-4 साल थे बहुत ही डिफिकल्ट थे।
आपने बताया पूरे व्यवसाय को जमाने में आपको काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, चुनौतियों के बावजूद जब सफलता मिलती है तो ये देखकर बहुत अच्छा भी लगता है। तो जब ये सफलता की कहानियां जब दूसरी महिलाएं सुनेंगी कि मुश्किल है लेकिन सफलता भी मिलना संभव है, कोई ऐसा आप संदेश देना चाहें या अपनी कोई ऐसी बात आप बाकी हमारे ऑडियंस से शेयर करना चाहें?
मैं तो हर महिला से यही बोलूंगी कि सपने देखो और जागते हुए सपने देखो। सोते हुए तो सब लोग सपने देखते हैं लेकिन जागते हुए सपने देखो, क्योंकि अगर वो सपने आप देखने लगोगे तो ही आपको कुछ करने का प्रयास करोगे। हम सपने में सोचते हैं कि हम बिलियनर बनना चाहिए या मुझे एजुकेशन में ये करना चाहिए, कुछ भी हो एक सपना होता है
जी।
तो सपने देखना कभी छोड़ना नहीं चाहिए क्योंकि नामुमकिन इसी में कुछ भी नहीं है। तो परसिवियरेंस होनी चाहिए, एक ड्रीम होना चाहिए, पैशन होना चाहिए और करने की इच्छा जरूर है।
तो आज के इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे अनुमति दीजिए, नमस्कार।